आज हम बायोलॉजी साइंस स्टडी कोर्स के मॉड्यूल टू, जिसका कि टाइटल है पादप और जीवों के प्रकार और प्रकार्य, यानी फॉर्म्स एंड फंक्शंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आपका मॉड्यूल है। इसका लेसन नंबर 6 है, रूट सिस्टम यानी कि जड़ तंत्र या फिर मूल तंत्र, उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हमें मालूम है कि जैसे कोई पेड़ है, जब वो ग्रो करता है, या पेड़ का अगर किसी प्लांट के पार्ट्स की बात करते हैं, तो उसमें हम जो आइडेंटिफाई करते हैं वो करते हैं जड़, हो गया तना है, पत्ती है, फूल है, फल है, बीज है, इस तरह से हम आइडेंटिफाई उसको पहचानते हैं कि ये सब है, यानी ये पेड़ है। और हमने ये देखा होगा कि जो तने हैं वो तो भूमि के ऊपर दिखाई देते हैं, लेकिन जड़ें जो हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं। कोई भी पेड़ है तो उसमें कुछ हिस्सा उसका नीचे जाता है, मतलब मृदा के अंदर जा रहा है, और दूसरा मृदा के ऊपर यानी जमीन के ऊपर दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट है उसका अक्ष का जो अवरोही यानी डिसेंडिंग पार्ट है, जो मृदा की ओर जाता है और उसके अंदर ही जड़ें के अंदर ही वृद्धि कर रहा है, वो हमारा जड़ या जड़ तंत्र या मूल तंत्र या फिर रूट सिस्टम कहलाता है। तो सबसे पहले जैसे मिट्टी में बीज बोते हैं, तो जब बीज अंकुरित होता है तो सबसे पहला जो भाग निकलता है वो निकलता है मूलांकुर, जैसे कि रेडिकल भी कहते हैं। और वो मूलांकुर जो है वो वृद्धि करने के बाद प्राइमरी और सेकेंडरी रूट यानी मूसला जड़ यानी टेप रूट बनाता है, और इससे बहुत सारे लेटरल रूट्स, अगर टेप रूट में बहुत सारे लेटरल रूट्स भी निकलती हैं, पार्श्व शाखाएं भी निकलती हैं, जिन्हें कि हम सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स भी कहते हैं। और ये मिलकर एक रूट सिस्टम का निर्माण करती हैं। और जड़ें क्या आती हैं, बहुत मिट्टी में, मृदा में बहुत गहराई से नीचे जाकर नीचे जाती हैं, और वहां पर पौधों के लिए जल और बहुत सारे जो खनिज लवण पौधों को उसकी अपनी वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, उनका अवशोषण करते हैं। और साथ ही साथ जो जड़ें हैं वो किसी भी पादप को मृदा में जकड़ के रखने के लिए, इससे रखने में भी मदद करती है, जमाए रखने का भी काम करती है। इसके अलावा जो भूमि से जो जल या खनिज आवश्यक जो खनिज तत्व हैं उनको अवशोषण जब करती है, अवशोषण करके वो पौधे के दूसरे भागों को भी पहुंचाने का काम भी जड़ के द्वारा ही होता है। तो इस प्रोग्राम के दौरान हम बात करेंगे जड़ की, उसके करेक्टरिस्टिक्स की, कैसे हम किसी जड़ को पहचान सकते हैं, और उसमें पाए जाने विभिन्न क्षेत्रों की, विभिन्न प्रकार की जड़ों के बारे में बात करेंगे, और रूपांतरण के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ उनके कार्यों के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लक्षणों की, कि जो स्पेशल या विशिष्ट लक्षण है वो क्या होते हैं किसी भी जड़ के। कि एक तो जड़ पौध नीचे रहती है जमीन के अंदर, तो वो हरे रंग की नहीं होती है, मतलब हरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, और जो कि सूर्य के प्रकाश और पानी और अन्य आवश्यक तत्वों की मदद से भोजन निर्माण का कार्य करते हैं। में नोड और इंटरनोड भी नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि तने में शाखाएं लगी होती हैं, शाखा में भी और ब्रांचेस निकलते हैं, और जड़ों में ना ही पत्तियां होती हैं, ना ही कोई बट किसी तरह की कोई भी कलिका होती है। और ये जो वृद्धि करते हैं वो धनात्मक गुरुत्व उन्हें बढ़ती, यानी गुरुत्व की ओर, यानी नीचे ग्रेविटी की ओर बढ़ती जाती है। और जहां पर पानी, क्योंकि जड़ें पानी और खनिज लवण खोजने का काम करती हैं, सोखती भी हैं, तो उसके लिए वो जल के प्रति आकर्षित होती हैं। यानी ये वृद्धि जो जड़ों में बहती है वो होती है धनात्मक जल अनुवर्ती वृद्धि होती है। लेकिन जड़ें जो हैं उनकी वृद्धि प्रकाश के विपरीत दिशा में होती है, यानी इससे दूर वृद्धि होती है। यानी इसीलिए जो जड़ें हैं वो उसकी जो वृद्धि होती है वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती यानी प्रकाश अपवर्ती होती है, मतलब कि प्रकाश की दिशा के दूर में ये वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं जड़ों के प्रकार की। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो दो तरह की जड़ें हैं, मूसला जड़ और झकड़ा जड़ या अपस्थानिक जड़ें। मूसला जड़ क्या होती है कि जो जड़ तंत्र का जो ग्रोथ हो रहा है, परिवर्धन हो रहा है, वो रेडिकल से होता है। हमने अभी बात की थी, जब बीज बोते हैं तो सबसे पहले मूलांकुर निकलता है, जिसकी वृद्धि द्वारा ही जो प्राइमरी रूट यानी मूसला जड़ बनती है, और यह जड़ जो है निरंतर वृद्धि करती रहती है। पहले एक सिंगल जड़ निकली, बाद में और उसमें बाद में उसमें शाखाएं भी यानी पार्श्विक जड़ें भी निकलती हैं। और मूसला जड़ जो है पौधे को भूमि में या मृदा में दृढ़ता से जमाए रखने में मदद करती है। इसीलिए ये, क्योंकि ये जमीन को के नीचे, जमीन को तोड़ तोड़ के यानी भेदती हुई वृद्धि करके बहुत गहराई तक पहुंच जाती है। और इसमें ये किन किन पौधों में मिलती हैं, ये खास तौर से द्विबीजपत्री जितने भी पौधे हैं, जैसे चना हो गया, गुड़हल है, नीम है, मैंगो है, पीपल हुआ, इसमें ये जड़ें मिलती हैं, यानी द्विबीजपत्री पौधों में खास तौर से मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी तरह की, जो हमने बात की जकड़ा जड़ या उपस्थानिक जड़ की, जिसे को कि हम एडवेंटिशियस रूट भी कहते हैं। तो ये तंत्र क्या है, एडवेंचर रूट सिस्टम क्या होता है, कि इसमें जो ये जो जड़ तंत्र है, इसमें जो प्राथमिक जड़ है वो छोटी और अल्प विकसित रह जाती है, और महीन और पतली रेशेदार जड़ों का एक गुच्छा, जो कि मूलांकुर और प्रांकुर के बेस से के साथ ही बढ़ता है, के आधारीय भाग से बढ़ती है, और ये जो इसीलिए ये झकड़ा जड़, यानी एक ही पॉइंट से बहुत सारी जड़ें निकल रही हैं। मूसला जड़ में एक सिंगल जड़ निकलती है, उसके बाद में पार्श्व जड़ें निकलती हैं, लेकिन ये एक ही पॉइंट से बहुत सारी जड़ें निकल आती हैं, पतली पतली महीन रेशेदार। ये जड़ें छोटी होती हैं, कम शाखित होती हैं, सतही और क्षैतिज रूप से फैलती हैं, और इसीलिए जो जड़ तंत्र है वो पौधे को दृढ़ता से जमाए नहीं रखता है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहराई तक नहीं, मूसला जड़ तो बहुत गहराई तक नीचे तक चली जाती है, इसीलिए वो स्थायी रूप से उसे जमाए रखती है। इस तरह की जो जड़ें हैं वो खास तौर से एक द्विबीजपत्री जो पौधे हैं, जैसे मक्का हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, घास है, उसमें ये पाई जाती हैं। आपके बुक में चित्र नंबर 6.1 है, जिसे आप देख सकते हैं, दोनों तरह की जड़ दिखाई गई हैं, मूसला जड़ और झकड़ा जड़ दोनों ही। अब हम बात करते हैं जो मूसला जड़ है वो कैसे प्रकार की, क्योंकि हमने अभी बात की थी जड़ तंत्र के प्रकार की, यानी दो तरह के हैं, उसी तरह से जड़ जो है वो भी दो प्रकार की होती है, अपस्थानिक जड़ और मूसला जड़। पहले हम बात करते हैं मूसला जड़ की। ये जड़ जो है प्राथमिक और मुख्य जड़ होती है, जो मूलांकुर से उत्पन्न होती है और भूमिगत और बहुशाखित होती है, और सामान्यतः द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। इसके और भी एग्जाम्पल जैसे हमने पहले भी बताए, और दूसरे एग्जाम्पल हैं सूरजमुखी हो गया आपका, सरसों हो गया, गाजर हो गया, इसमें ये जड़ मिलती है। दूसरी जड़ जो हमने बात की थी अपस्थानिक जड़ तंत्र के बारे में, अब हम अपस्थानिक जड़ की बात करते हैं। तो इन जड़ों का विकास मूलांकुर से ना होकर पौधे के किसी भाग से हो सकता है, किसी भी हिस्से द्वारा होता है, और ये एरियल और अंडरग्राउंड दोनों ही हो सकती है, यानी भूमिगत भी हो सकती है और वायव भी हो सकती है। और ये तने के काट जो एक्सपेंशन है वो जैसे कटिंग है, कटे भाग, जैसे गुलाब का टहनी काटते हैं तो भी वहाँ वो नई, अगर कहीं उगाते हैं उसको तो दोबारा से वो उग जाती है। पर्वसंधि से, यानी मनी प्लांट को आपने देखा होगा कि एक नोट से काट तोड़ के अगर हम लगा देते हैं तो वहाँ से वापस जड़ें निकल जाती हैं। बरगद के पेड़ की शाखाएं आपने देखी हैं जड़ जो निकलती हैं, या फिर घास में जो कि स्तंभ के आधार से ही उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं जड़ के क्षेत्र, यानी रीजन क्या, कौन कौन से हैं, चाहे वो झकड़ा जड़ है या फिर या वो मूसला जड़ है, कोई भी जड़ हो, दोनों जड़ों में जो जड़ के शीर्ष भाग में समान प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, सब दोनों में एक ही जैसे क्षेत्र पाए जाते हैं, जो कि हमारे चित्र नंबर 6.2A में दिखाए हैं। ये जो है जड़ शीर्ष के लॉन्गिट्यूडनल भाग काट है, यानी उदग्र काट की चित्र है, जो कि 6.2A में दिखाया गया है। तो इसमें पहला जो क्षेत्र है वो मूल गोप होता है, यानी रूट कैप का क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र होता है इसमें विभेद्य की कोशिका रीजन, यानी रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक सेल्स का है। तीसरा इसमें रीजन होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन का, यानी दीर्घीकरण का। और चौथा होता है परिपक्वन क्षेत्र, यानी रीजन ऑफ मेचुरेशन का। तो पहले हम बात करते हैं रूट कैप, जो सबसे पहला इसका पार्ट है। ये जो जड़ के अग्रस्त सिरे पर उपस्थित एक छोटी सी टोपी जैसी, कैप का मतलब टोपी होता है ना, तो टोपी जैसी रचना है, जो कि मेरिस्टमेटिक क्षेत्र में बनता है। और इसका जो मुख्य कार्य है वो ये है कि जो जड़ के जो कोमल भाग है, शीर्ष भाग, यानी एपिकल मेरिस्टमेटिक को जो है वो विभोज्य तक को मिट्टी के सख्त कणों से बचाने का, यानी उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। जब जड़ें मृदा के को भेदते हुए जब नीचे वृद्धि करती हैं, तब मूल को नष्ट होने लगती है, लेकिन बार बार नई कोशिकाएं बनती रहती हैं इसके द्वारा, परंतु निरंतर बनती रहती हैं, इसलिए कुछ हानि नहीं होती है एज सच। विभिन्न जो जलीय पौधे हैं जैसे पिस्टिया है या फिर जलकुंभी है, उसमें मूल को एक पाउच जैसे थैली के जैसे होती है, जिसे कि हम रूट पॉकेट के नाम से जानते हैं। दूसरा इसका भाग है रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक सेल्स। ये जो है सक्रिय रूप से विभाजन करने वाली कोशिकाओं का एक छोटा सा क्षेत्र है जो आपको इसमें दिखाया गया है, जिसे कि एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। और इसमें तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। डर्मेटोजन सबसे बाहर की परत होती है, जिसकी कोशिकाएं मूलगोप और मूलीय त्वचा यानी एपिब्लेमा में परिपक्व होती है। दूसरा है पेरिब्लेम, जो डर्मेटोजन के भीतर एक कॉर्टेक्स बनाती है। और तीसरा है प्लीरोम, यानी जो सेंट्रल भाग है, केंद्रीय भाग है, जिसकी सेल्स बड़ी होकर स्टील बनाती हैं। एक बीज पत्री पौधे में मूलगोप का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं हैं उनका एक स्वतंत्र स्वरूप समूह है, जिसे कि हम कैलिप्ट्रोजन यानी गोपक जन कहते हैं, उसे होता है। तीसरा पार्ट है इसमें दीर्घीकरण क्षेत्र यानी रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र से के बाद ही होता है। और यहाँ की जो कोशिकाएं हैं, मतलब दीर्घीकरण की बात करें, इलोंगेशन के अंदर लंबाई में बढ़ती हैं, लंबाई में तेजी से इस कोशिकाएं बढ़ती हैं, और जड़ों की लंबाई में जो वृद्धि होती है वो इसी इन्हीं कोशिकाओं की वजह से होती है। अब आता है चौथा क्षेत्र, वो है हमारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन यानी परिपक्वन का क्षेत्र। ये क्षेत्र जो है दीर्घीकरण क्षेत्र से अगला क्षेत्र होता है, और यहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो विभिन्न ऊतकों में परिपक्व और विभेदित होती हो जाती हैं, जैसे कि जड़, रोम, और जो रोमदारक क्षेत्र है, पेलिफेरस क्षेत्र रीजन है, जिसमें कि यूनिसेल्युलर हेयर्स पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, जो कि मिट्टी से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, धागे जैसी रचनाएं हैं। और दूसरा है परमानेंट रीजन, जो जड़ रोम क्षेत्र के बाद पाया जाता है, और ये इसमें कोई रोम या सिलिया नहीं होते हैं, फाइबर जैसी कोई रचना नहीं होती है। इनसे लेटरल रूट्स बनती हैं और पौधे को मिट्टी में जमाए रखने में ये मदद करती हैं, और जो अवशोषित जल और खनिज लवण हैं उनको पौधों के दूसरे भागों में, ऊपर के भागों में पहुंचाने का काम भी करती हैं। तो जो क्लाउस थे उन्होंने जो मक्का के मूल शीर्ष में मूलगोप और विवोचेतक क्षेत्र में के बीच एक निष्क्रिय कोशिकाओं का समूह ज्ञात किया, जिसे कि हम कहते हैं शांत क्षेत्र, या उन्होंने इसको नाम दिया था क्विसेंट सेंटर। जब जो सक्रिय विभोजक कोशिका है वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो इस अवस्था में भी इसकी कोशिकाएं सक्रिय रहती हैं और विभाजन का काम करने लगती हैं। अब हम बात करते हैं जड़ों के रूपांतरण की। हमने प्रकार की बात की कि दो तरह के हैं, जकड़ा जड़ और मूसला जड़, लेकिन जो जड़ दोनों जड़ें हैं इनका जो मुख्य काम है वो तो है मिट्टी में जमाए रखना, और दूसरा है कि मिट्टी से, मृदा से खनिज और आवश्यक तत्वों को पौधे के दूसरे भागों तक पहुंचाने का, अवशोषण करके दूसरे भाग में पहुंचाने का। लेकिन इसके अलावा भी कुछ विशिष्ट कार्यों के कारण भी ये जड़ें बदल जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे जैसे कि इसीलिए जड़ के बहुत सारे रूपांतरण हैं, जैसे मूसला जड़ के रूपांतरण भी हैं और अपस्थानिक जड़ों के भी रूपांतरण हैं। जैसे मूसला जड़ के अगर रूपांतरण की बात करें तो उसमें वो कॉनिकल रूप में भी हो सकती है, यानी शंकु रूपी हो सकता है, तर्कु रूपी हो सकती है, कुंभी रूप हो सकता है, और गांठदार यानी ट्यूबरस रूप रूट के रूप में भी होती है, टेप रूट के रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन से। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट की, तो उसके भी बहुत सारे रूपांतरण हैं, जैसे कि कंदिल यानी ट्यूबरस जड़ होती है, संपुलित गुच्छित यानी फेसिकुलेटेड जड़ हो गई, ग्रंथिल यानी नोड्यूलोस जड़ हो गया, मोनोली फॉर्म जो है जड़ वो एक और प्रकार है इसका, फिर वलियत यानी एनुलेटेड जड़ है, एसिमिलेटरी जड़ होती हैं, एपिफाइटिक यानी अधिपादपीय जड़ हैं, वाटपुत्रीतर यानी न्यूमेटोफोर या श्वसन जड़ें हैं, चूषक यानी सकिंग या हॉस्टेरिया यानी चूषक जड़ हो गई, प्रॉप जड़ हो गई, फिर है स्टिल्ट जड़ यानी अवस्थम जड़ें, आरोही यानी क्लाइंबिंग जड़, प्रतानी यानी क्लिंगिंग जड़ और प्लावी यानी फ्लोटिंग जड़, यानी इस तरह रूपांतरण है, यानी 14 तरह की जड़ें झकड़ा जड़ का रूपांतरण है और 4 प्रकार जो है हमारे मूसला जड़ के हैं। जो मूसला जड़ हैं जब वो भोजन इकट्ठा कर लेती हैं, खाद्य पदार्थों का भंडारण कर लेती हैं, तो वो जड़ें हैं वो मांसल हो जाती हैं यानी फूल जाती हैं। जैसे कि तर्कुरूपी की बात की, हम शंकुरूपी की बात करते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा गाजर, गाजर भी एक जड़ ही है जिसका कि आधार भाग तो चौड़ा होता है और अग्र सिरा जो है क्रमशः सकटा पतला और सकरा होता जाता है, तो वो एक शंकु के रूप में आ जाती है। दूसरे तरह की जड़ जो है वो तर्कुरूपी है यानी फ्यूजी फॉर्म है, जिसका एग्जाम्पल है मूली। मूली का क्या होता है कि मध्य भाग तो फूला होता है लेकिन ऊपर का और नीचे का जो सिरा है वो पतला होता है, क्रमशः पतला होता है, तो ये मूली भी एक तरह से जड़ ही है। और तीसरा है हमारा शलगम। शलगम का आकार जो है ना कुंभ के जैसा होता है, कुंभी रूपी होता है यानी नैपी फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, आधारी भाग तो लट्टू जैसा गोल हो जाता है और जो अंतिम भाग है, जो निचला भाग है, वो पतला सा धागे जैसा हो जाता है। तो हम जाएं मूली खाएं, गाजर खाएं या शलगम खाएं, वो हमारे जड़ ही होती हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर आती है गांठदार या कंदिल जड़ें या ट्यूबरस हैं, जो फोर ओ क्लॉक जो मिराबिलस की जड़ें हैं वो उस तरह की होती हैं, मांसल और मोटी होती है लेकिन उनकी कोई आकृति नहीं होती है, वो अनियमित आकार की होती हैं। अब हम बात करते हैं अपस्थानिक जड़ों की। जो पहली जड़ है वो है कंदिल यानी ट्यूबरस है, ये लेटी हुई यानी प्रोस्टेट स्तंभ की पर्व संधियों से उत्पन्न अनियमित मांसल और फूली हुई जड़ें होती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा शकरकंद, जिसको कि हम देखते हैं अपनी यूज भी करते हैं, तो ये भी एक जड़ ही है जो कि टेप रूट का नहीं है बल्कि ये है हमारी झकड़ा जड़ यानी अपस्थानिक जड़ का एक रूपांतरण है। दूसरी टाइप की जो जड़ है वो गुच्छित यानी फैसिकुलेटेड जड़ है, यानी स्तंभ के एक ही बिंदु से उत्पन्न मांसल जड़ों का एक गुच्छा होता है, जैसे कि डहेलिया की जड़ें हैं। तीसरी तरह की ग्रंथिल जड़ें हैं, जो कि जड़ों के केवल सिरे जो हैं मोती जैसे फूल जाते हैं, इसका एग्जांपल आम हो गया, अदरक है। चौथी तरह की जड़ है मणिरूप यानी ओनिली फॉर्म, यानी मणि के रूप की जैसे होता है, जैसे कि घास और सेज की जड़ है। इसमें क्या होता है, जड़ों की जो छोटे छोटे अंतराल पर वो फूल कर मणियों की माला के समान एक आकृति बना लेती है, यानी जैसे मनके होता माला का एक मोती जैसा है, उस तरह से ये जड़ें जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर उस तरह का फॉर्म इनका रूप हो जाता है, और ये जड़ें हैं घास और सेज की। पांचवी तरह की जड़ जो है वो है हमारी वलयत जड़, यानी जो जड़ की संरचना है वो ऐसी होती है जैसे एक के ऊपर एक चक्र, असंख्य सूखे फूले हुए चक्रिकाएं जो है, सर्कल जो है व्यवस्थित हो जैसे एपेक्स। कुछ जड़ें जो होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए रूपांतरित हो जाती हैं, तो उसमें पहले है आपकी स्वांगी कारक यानी एसिमिलेटरी जड़। ये जड़ें जो है प्रकाश में उद्भासित होते ही, जैसे अगर प्रकाश इनको मिलता है तो ये पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल युक्त हो जाती हैं और हरी हो जाती हैं और अपना भोजन बनाने लगती हैं, फॉर एग्जाम्पल गिलोय या टिनोस्पोरा की वायु एरियल जो रूट्स हैं। फिर कुछ जड़ें जो हैं वायुमंडल की आर्द्रता का अवशोषण करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे कि हमारे अधिपादप हैं यानी आर्किड जो है, उसकी जो वायु जड़ें हैं वो हरी हो जाती हैं और मृत स्पंजी जो ऊतक हैं विलामिन द्वारा ढकी होती हैं और वायुमंडल से नमी को अवशोषित करने में ये सहायता देती हैं। फिर उत्तम गैसीय विनिमय के लिए भी कुछ जड़ों का रूपांतरण हो जाता है, जैसे जहाँ जिस मृदा में दलदल वाले अगर क्षेत्र है वहाँ पर ऑक्सीजन की, उस मृदा में ऑक्सीजन की कमी होती है तो कुछ जड़ें ऊपर निकल आती हैं, तो कुछ जड़ें ऋणात्मक गुना गुरुत्वानुवर्ति हुआ और सीधे ऊपर की तरफ वायु में वृद्धि करती हैं, और ये जो जड़ें हैं उद्भासित जड़ों के शिखरों पर असंख्य छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें की न्यूमेटोफोर कहते हैं, जिनके द्वारा ये जड़ें शोषण करती हैं। ये शंकुनुमा स्पाइक होते हैं और जल के से बाहर निकले रहते हैं। दलदल वाले क्षेत्र में अगर राइजोफोरा का अगर आप मैंग्रोव है वो अगर देखें तो उसमें वो जड़ें ऊपर दिखाई देती हैं, जैसे कि आपको चित्र में भी दिखाई देगा। 6.5 में ये बन दिया है, ए वाला अगर फिगर देखेंगे तो ये राइजअप, ये जड़ें जो हैं वो वायु पुटीधर श्वसन जड़ हैं। फिर कुछ जड़ें जो हैं वो परपोषी से भोजन चूसने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं, तो उनको जड़ों को हम चूषक जड़ कहते हैं या हॉस्टेरिया कहते हैं, यानी चूषकांग कहते हैं। मतलब कि परजीवी पौधे के तने से विकसित जो चूषक जड़ें हैं वो जीवित होस्ट के शरीर का को भेद कर उससे अपना पोषण लेती हैं, नहीं वो खुद सर्वाइव करती हैं, और वो जो वृक्ष है या जिस पर भी है वो सूख जाएगा लेकिन ये अपना पोषण पूरा उससे ले लेती हैं। जैसे अमरवेल, जिसका कि फिगर चित्र दिखाया गया है 6.5 का, जो बी वाला वन है उसको आप 1 और 2 को देख सकते हैं कि किस तरह से वो एक पौधे के तने पर लिपटी हुई है और किस तरह से उसके जो जड़ें हैं वो उससे पोषण लेते हैं। कुछ जड़ें जो है मजबूत आधार प्रदान करने के लिए भी रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे कि प्रॉप जड़ जो है, क्या था कि वृक्षों की शाखाओं से जड़ें उत्पन्न होकर नीचे की तरफ लटकती हुई वृद्धि करती हैं और जमीन में धंसकर भारी शाखाओं को सहारा देने का काम करती है। जैसे बरगद की जड़ें आपने देखी होंगी कि बरगद में बहुत सारी जड़ें बाहर भी निकली होती हैं। दूसरी तरह की जो जड़ें हैं वो अवस्तम्भ जड़ें हैं, जो कि तने के आधारी भाग के समीप से पर्वसंधियों में से अनेक जड़ें उत्पन्न होती हैं, तिर्यक रूप से वृद्धि करती हुई मृदा में धस जाती हैं और प्रबल सहारा प्रदान करती हैं, जैसे गन्ना और केवड़े की जड़ें हैं। उसी तरह से आरोही जड़, यानी जो कमजोर तने वाले पौधे होते हैं, उनकी पर्व संधियों से भी कुछ जड़ें विकसित होती हैं, उत्पन्न होती हैं, जो कि किसी आधार या सहारे को पकड़कर या चिपक कर वो पौधे को ऊपर चढ़ने में, आरोहण करने में मदद करती हैं। जैसे मनी प्लांट हो गया या पान का पत्ता का देखा होगा, तो उसकी जड़ें भी उसी तरह की होती हैं। तीसरी एक और जो अन्य जड़ है वो होती है प्रतानी जड़। कुछ विशेष जो अपस्थानिक जड़ें हैं वो तनों की दरारों या उभारों में धंसकर अधिपादप पौधों को स्थिरता प्रदान करती हैं, यानी इसका उदाहरण है एपिफाइट्स और आर्किड। कुछ जड़ें तैरने के लिए और श्वसन के लिए रूपांतरित हो जाती हैं, यानी ये जलीय पौधे हो गए, अगर तैरने की बात करें तो जल में पाए जाने वाले पौधे हो गए जलीय पौधे, तो इनकी जड़ें क्योंकि तैरने में हेल्प करती हैं तो इन्हें हम प्लावी जड़ कहते हैं। कुछ जो जलीय पौधे हैं उनकी पर्व संधियों से स्पंजी वायु से भरी हुई कुछ प्लावी जड़ें फ्लोटिंग रूट उत्पन्न हो जाती हैं और ये पौधे को जल पर तैरने के लिए सहायक होती हैं ताकि पौधा सांस ले पाए। एक अगर कलकत्ता जो शिवपुर है कलकत्ता के पास, वहाँ पर एक प्रसिद्ध बरगद का पेड़ है जो करीबन 200-250 साल से भी बड़ा है, पुराना है, और जिसके शिखर की परिधि जो है 404 मीटर के बराबर लगभग है, और उसमें कम से कम 1600 प्रॉप जड़ें भी हैं। अब हम बात करते हैं जड़ों के कार्य के बारे में, कि जो जड़ें हैं वो पौधे को जमीन में मजबूती से जमाए रखने का काम करती हैं, अवशोषण में सहायता करती हैं, यानी मृदा से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करके ऊपर की ओर यानी पौधे के दूसरे भागों को पहुंचाने का कार्य करती हैं। ये इनका फंक्शनल कार्य की फिजल हो गया, यानी कार्य की प्रकार हो गया, और कुछ विशेष प्रकार हैं इनके, जो विशेष फंक्शन है वो ये है कि जड़ें अपने आकार की रूपांतरण से विशिष्ट कार्य किए कार्य करने में, जैसे कि खाद्य भंडारण हो गया, एसिमिलेशन है, वायुमंडलीय जो ह्यूमिडिटी है उसका अवशोषण करना, और जो होस्ट प्लांट है उससे पोषण को चूसना, गैसीय एक्सचेंज की बात, और मैकेनिकल कार्य जैसे फ्लोटिंग हो गया या फिर बायोन्सी दृढ़ स्थिरीकरण के लिए और आरोहण करने में भी सक्षम हो जाती हैं। तो ये हुए जड़ों के कार्य। आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि आप अगर आप घर में अगर बहुत सारे अगर आपके सब्जी और फ्रूट्स अगर लेके आए हैं, तो जैसे गाजर मूली हो गया, शलगम इस समय आएगी, गन्ना है, मनी प्लांट है, इनको या सरसों का पौधा है या धनिए की है, उसमें आप देख सकते हो कि किस तरह के ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि किस तरह की जड़ें इसमें पाई जाती हैं। और ऑब्जर्वेशन में आपको क्या देखना होगा जिन जड़ें क्या हरी हैं, उनमें कुछ पर्व संध्या पर्व पर्व संध्या हैं, क्या उसके ऊपर कुछ पत्तियां हैं या फिर कुछ बड दिखाई दे रही हैं, और वो कौन सा टाइप है उसका, कि वो मूसला जड़ है या वो झकड़ा जड़ है। और यदि आपने कुछ मॉडिफाइड रूट के स्पेसिमन ली देख रहे हो तो उसमें ये देखिए कि वो कौन सा रूपांतरण है, क्योंकि इसमें आपको आपकी बुक में काफ़ी सारे दिए हैं तो आप देख सकते हो और अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कौन सी जड़ है, कौन सा रूपांतरण है, किस उसमें इसका कार्य आ रहा है। अब हम बात करते हैं जड़ की जो प्राथमिक संरचना के बारे में। तो सबसे पहले हम उदाहरण ले रहे हैं द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट रूट की, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन, कि उसमें कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती हैं। पहला जो लेयर है वो होता है एपिब्लेमा, जो एकल है, पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं द्वारा बनी सबसे बाहरी परत है, और कुछ इसमें कोशिकाएं उभर कर एक कोशीय मूल रोम बनाती हैं, रूट हेयर बनाती हैं, और इनका जो काम है वो है रक्षा करना और जल का अवशोषण करना। इसका जब थोड़ा सा दूसरा जो इसका जो पार्ट आता है वो आता है हमारा कॉर्टेस क्या वलकुट का, ये बड़ा खंड होता है, बहुपरत युक्त होता है, पतली भित्ति युक्त इसकी पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस में पाए जाते हैं और खाद्य और जल का भंडारण करने में हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। उसके बाद थर्ड जो है वो इसका पार्ट है जड़ का, वो है हमारा एंडोडर्मिस, जो कि कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत है, सघन रूप से व्यवस्थित ढोलकाकार कोशिकाएं जिनकी रेडियल भित्ति पर पट्टी जैसा स्थूलन पाया जाता है, जिसे हम कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं, और आदिदारु के सम्मुख स्थित इसकी कुछ कोशिकाएं स्थूलन रहित होती हैं और कुछ पैसिव सेल, इसीलिए इन्हें हम पैसिव सेल कहते हैं, और ये जल और खनिज को वलकुट से जाइलम तक, कॉर्टेक्स से जाइलम तक पहुंचाने में सहायता करती हैं। अगला हिस्सा इसका स्टील यानी रंब है, जो एंडोडर्मिस से अंदर की ओर स्थित सभी ऊतक जो है वो स्टील यानी रंब बनाते हैं। फिर पेरिसाइकल है फोर्थ पार्ट इसका, जो कि एंडोडर्मिस के अंदर स्थित एक परत होती है। सेकेंडरी ग्रोथ के समय पार्श्व जड़ें वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम की उत्पत्ति का स्थल यही है, और वेस्कुलर बंडल में जड़ में जाइलम और फ्लोएम के जो खंड हैं या पूल हैं वो एकांतर क्रम में यानी अंतर रेडियल रूप से व्यवस्थित होते हैं, यानी जाइलम एक्सार प्रकार का होता है, जहां पर कि प्रोटोजाइलम आरंभ में बना जाइलम है जिसकी वाहिकाएं जो है वो सक्रिय होती हैं और जिसमें ट्रेकीड भी विद्यमान रहता है, और परिधि की ओर अगर हम जाते हैं तथा मेटाजाइलम में बनी हुई ट्रेकीड युक्त होता है, यानी वो केंद्र की ओर इसका प्लेसमेंट होता है, इसकी स्थिति होती है, और जाइलम की पैचों की संख्या के आधार पर जाइलम द्वि आदिदारुक यानी डायार्क हो सकता है से छः षट आदिदारुक यानी हेक्सा सेक्स पैच हो सकता है, यानी जो जाइलम के उसकी पैचों की संख्या है वो दो से छः तक हो सकती है। फिर पिताता है यानी मज्जा, कभी कभी जाइलम पैच के मेटाजाइलम के अंदर में मिल जाते हैं और तब जो है वो फिथ या तो होता ही नहीं है या फिर बहुत कम पैरेन्काइमेटस होता है। अगला भाग है इसका संयोजी मृदुतक यानी कंजक्टिव पैरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा ऊतक जो टिश्यू हैं वो जाइलम और फ्लोएम के बंडलों के बीच योजक के रूप में विभिन्न आरों पर यानी रेडियाई पर स्थित होते हैं। तो जो द्विबीजपत्री जड़ है उसका उदाहरण है चना, जिसमें कि कौन कौन से द्विबीज की अगर टीएस देखते हैं तो क्या कौन कौन से पार्ट हम देखने होंगे, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, स्टील, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ और कंजक्टिव पैरेन्काइमा। अब हम बात करते हैं एक बीजपत्री जड़ के अनुपस्थ काट में कौन कौन से भाग दिखते हैं, उसमें भी एपिविलेमा होती है जो सबसे बाहर है, एक परत वाली पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं द्वारा बनी होती है, सघन रूप से अव्यवस्थित होती है। कुछ कोशिकाएं उभर कर एक कोशिकीय मूल रोम बनाती हैं। सेकंड इसमें कॉर्टेक्स की बात करते हैं, बड़ा खंड होता है बड़ी बहु परत वाली पेरेन्काइमा, अंतर कोशिकीय अवकाश युक्त खाद्य सामग्री और जल का अवशोषण करती है। एंडोडर्मिस जो कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत है, विशिष्ट कैस्पेरियन पट्टियों द्वारा पथ और कोशिकाओं युक्त होता है इसका। एंडोडर्मिस जो स्टील है, रंभ है, यानी एंडोडर्मिस के अंदर की ओर सभी तक रंभ बनाते हैं, यानी स्टील बना रहे हैं। फिर पेरिसाइकिल, एक कवारत वाली कोशिका पतली कोशिका भित्ति युक्त होती है, लेटरल रूट का उत्पत्ति स्थान यही है। फिर आते हैं वैस्कुलर बंडल, अनेक वैस्कुलर जाइलम और फ्लोएम के पुल जो है आर्य रूप से व्यवस्थित होते हैं, जाइलम एग्जाक और पॉलियरक होता है। फिर मज्जा बात करते हैं, मज्जा पित्त की केंद्र में स्थित बहु बड़ी सुव्यवस्थित मृदुतक अथवा द्रणुतक खाद्य पदार्थों का संचय करती है। फिर कनेक्टिव टिश्यू जो है जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रैंड के बीच स्थित डाइकोट और मोनोकोट जड़ों की आंतरिक रचना का जो है ना एक हम कंपेरेटिव कर लेते हैं कि क्या अंतर है उनके। उसमें जो एक बीजपत्री जड़ है उसमें जो वैस्कुलर बंडल की संख्या है वो 206 होती है द्विबीजपत्री में, लेकिन एक बीजपत्री में वो अनेक होते हैं। पेरिसाइकल जो है पार्श्वीय जड़ों का तथा संवयन एधा और काक एधा का उत्पत्ति केंद्र है, लेकिन एक बीजपत्री में केवल पार्श्वीय जड़ों का उत्पत्ति केंद्र होती है, एधा उपस्थित होता है लेकिन एक बीजपत्री में एधा नहीं होता है। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट रूट में होती है, मोनोकोट रूट में नहीं होती है, और पित्त जो है अति लघु और अनुपस्थित होता है लेकिन एक बीजपत्री में ये सुविकसित होता है। अब हम बात करते हैं पार्श्वीय जड़ों की उत्पत्ति के बारे में। जो पार्श्वीय जड़ों की उत्पत्ति है वो एंडोजीनस प्रकार की, इसका उत्पत्ति जड़ की जो गहरी परत है उससे होता है। उत्पत्ति केंद्र जो है पेरिसाइकिल है, आदिदारु के सम्मुख तथा कोशिकाएं विभाजित होकर एंडोडर्मिस में उभार पैदा करती हैं, और जो उभार है वो कॉर्टेक्स के भी अंदर प्रवेश करता है और पार्श्व शाखा के रूप में बाहर निकलता है, दिखाई देता है। तत्पर उसके बाद जो उभार में है वो जड़ शीर्ष के तीनों विभाजितक जो प्रकार हैं यानी डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लूरोम विभेदित डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, और अंततः जो पार्श्वीय जड़ है मुख्य जड़ को भेद कर बाहर आ जाती है। और जो पार्श्वीय जड़ की जो संख्या है वो जाइलम की संख्या के अनुरूप ही होती है। अब हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ क्योंकि द्विबीजपत्री जड़ों में ही होती है तो इसमें जड़ों की लंबाई में वृद्धि जो है वो एपिकल मेरिस्टेम से होती है, इसीलिए इसे प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। और प्राइमरी वृद्धि के बाद ही जड़ें मोटाई में अर्थात घेरे में भी वृद्धि करती हैं, इस वृद्धि को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, और ये केवल डाइकोट रूट में ही पाई जाती है, मोनोकोट रूट में नहीं होती है। जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो लेटरल मेरिस्टेम यानी वैस्कुलर कैम्बियम और कॉक कैम्बियम में ही होती है, और जो संवहन और काक एकदा की जो उत्पत्ति है वो पेरिसाइकिल के से सेकेंडरी टिश्यूज के रूप में विकसित होती है। और जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो कैसे होती है कि जो प्रोटोजाइलम के सम्मुख पेरिसाइकिल की कोशिकाएं हैं वो विभाजित होकर पट्टीनुमा संवहन एधा का निर्माण करती हैं, जिसे कि आप फिगर नंबर 6.10b में देख सकते हैं। फ्लोएम जो है गुच्छ के भीतर की ओर उपस्थित संसदित ऊतक की कोशिकाओं में भी पट्टीनुमा संवहन एधा विकसित करता है, जो कि आपका फिगर 6.10b में देख ए और बी में दिखाया गया है। फिर दोनों जो संवहन पट्टिकाओं का पार्श्विक संयोग होता है और एक रिंग का आकार जो पहले वेवी था यानी तरंगित था होता है, पर बाद में फ्लोएम के अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम ऊतकों की अतिवृद्धि से गोल आकार का हो जाता है। तो ये फिगर 6.11a में दिखाया गया है। और एधा की जो कोशिकाएं हैं वो ईट नुमा होती हैं और विभाजन के द्वारा अपनी दोनों तरफ यानी कि परिधि और केंद्र की ओर कोशिकाएं बनाती हैं। केंद्र की ओर बनी जो सेकेंडरी जाइलम है तथा परिधि की ओर जो बनी कोशिकाएं वो सेकेंडरी फ्लोएम में विभेदित हो जाती हैं, और आदिदारु के बाहर की ओर जो बना सेकेंडरी ऊतक है वो विभेदन प्राथमिक मज्जा किरण यानी प्राइमरी मेडुलरी रेज में होता है, और इससे इसके बनने से के बाद प्रोटोजाइलम नष्ट नहीं होता है, जो कि दिखाया गया है 6.11 ए में फिगर में आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो काग एधा है यानी फैलोजन है, उसकी उत्पत्ति भी पेरिसाइकल से ही होती है। काग एधा के सक्रिय विभाजन के फलस्वरूप ही परिधि की ओर जो है फैलम या कॉर्क बनता है, और अंदर की ओर जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है वो फैलोडम में विभाजित होता है। फैलोजन और फैलम और फैलोडर्म इकट्ठे मिलकर पेरिडर्म का निर्माण करते हैं। पेरिडर्म जो है सुरक्षा का काम करती है, और लास्ट में जो वर्धनकारी कॉर्क है के बाहर एक संपूर्ण प्राथमिक ऊतक यानी इंडोडर्मिस कॉर्टेक्स और एपिब्लेमा फटकर बाहर निकल आता है। तो इस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट रूट में होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आज हमने बात की थी। तो हमने बात की कि मूलांकुर जो है लंबा होकर प्राइमरी रूट बनाता है जो कि मूसला जड़ होती है। जड़ें हरी नहीं होती क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और उसमें ना ही पर्व और पर्व संध्या होती हैं, पत्तियां और कलिकाएं भी नहीं होती हैं। जड़ें जो हैं गुरुत्व या जल की ओर बढ़ती हैं लेकिन प्रकाश के विपरीत वृद्धि करती हैं। जड़ें दो प्रकार हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ तंत्र। मूसला जड़ का जो परिवर्तन है वो मूलांकुर से होता है, लेकिन अपस्थानिक जड़ों का जो परिवर्धन है वो मूलांगुर से ना होकर पौधे के किसी अन्य भाग से होता है। जड़ के शीर्ष भाग में चार क्षेत्र होते हैं, मूलगोप क्षेत्र, विभोचितकी क्षेत्र, देकीकरण क्षेत्र तथा परिपक्वन क्षेत्र होता है। जड़ का जो मुख्य कार्य है वो पौधों को स्थिरीकरण प्रदान करके मिट्टी में जमाए रख और जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करना है। कुछ पौधों में जड़ें विशिष्ट कार्य करने के रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे खाद्य संचय, स्वांगीकरण, श्वसन, वायुमंडलीय आर्द्रता का अवशोषण, परपोषी पौधे में पोषण चूसना तथा यांत्रिकीय कार्य यानी मिट्टी में मजबूती से जमाए रखना आरोहण और उत्प्रावण के लिए। जड़ की आंतरिक संरचना एक कोश के रोम, एक परत में व्यवस्थित पेरिब्लेमा, वलकुट, सुस्पष्ट अंतस्वता, कैस्पेरियन पट्टियों वाली कोशिकाएं तथा पथ कोशिकाएं युक्त होती हैं। एक परत में व्यवस्थित परिरंभ से अरीय संवहन बंडल रंभ बनता है। सेकेंडरी डाइकोट रूट में से एक पत्र की जड़ की यानी मोनोकोट रूट से की अपेक्षा कम से कम 206 वेस्कुलर बंडल होते हैं। साथ ही अल्पविकसित मज्जा और एधा भी पाई जाती है। पार्श्वजनों की उत्पत्ति अंतर्जात प्रकार की होती है। पार्श्वजनों की संख्या जाइलम की संख्या के दारू यानी उसकी संख्या के बराबर होती है। द्विबीजपत्री जड़ों में पार्श्वीय जड़, संवहन एधा और काक एधा की उत्पत्ति परिरंभ से होती है। द्विबीजपत्री जड़ में एधा की उपस्थिति के कारण ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जड़ों के प्राथमिक तथा लंबाई में वृद्धि शीर्ष विभाजनों की क्रियाशीलता से होती है। द्विबीजपत्री जड़ों में मोटाई अर्थात घेरे में वृद्धि पार्श्व विभाजक द्वारा द्वितीय वृद्धि में से होती है। जो संवहनीय एधा है कि उत्पत्ति प्रोटोजाइलम के सम्मुख परिरंभ की कोशिकाओं से तथा फ्लोएम के भीतर की उपस्थित संसाधित ऊतकों की कोशिकाओं के पट्टी के रूप में होती है। प्रारंभ में एधा लहरदार होती है परंतु बाद में वर्तुलाकार हो जाती है। संवहनीय एधा परिधि की ओर द्वितीयक फ्लोएम और केंद्र की ओर द्वितीयक दारू का निर्माण करती है। प्राथमिक मज्जा किरण का विभेदन आदि दारू के बाहर होता है। कॉर्क एधा यानी फैलोजन की उत्पत्ति भी पेरिसाइकल से ही होती है, और यह परिधि की ओर फैलम और अंदर की ओर यानी द्वितीयक बलकुट या कॉर्क अस्तर यानी फैलोडम बनाता है। कॉर्क कागजन और कॉर्क अस्तर जो है इकट्ठे मिलकर पेरिडर्म बनाते हैं, जिसका कार्य आंतरिक ऊतकों की रक्षा करना होता है। इस तरह से आज हमने बात की जड़ों के रूपांतरण के बारे में, जड़ क्या है, उसके अभिलक्षण क्या हैं, जड़ तंत्र के कौन कौन से प्रकार हैं। साथ ही हमने जड़ क्षेत्र के बारे में बात की और जड़ों के रूपांतरण की बात की, और जड़ का जो डाइकोट मोनोकोट रूट का स्ट्रक्चर क्या है और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है इसके बारे में बात की। धन्यवाद।